الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا زدنا علما. तो इस क्लास के अंदर हम रिश्तेदारियां निभाना यानी रिलेशनशिप मैनेजमेंट का उनवान पढ़ रही हैं अपने हजरत के सिलसिले दुरूस उमूर खानदारी में हुस्ने इंतजाम में से। तो इस यानी ये किताबी शक्ल में जो शाया हो चुका था उसके अंदर जो है ये दर्स नंबर मेरे ख्याल में नहीं पता काउंट करके रखा था। तो दर्स नंबर रिश्तेदारियों नहीं मिल रहा होंगे। तो रिश्तेदारियां निभाना रिलेशनशिप मैनेजमेंट इसके अंदर हमने पीछे की क्लासेस के अंदर पढ़ा था कि सबसे अहम जो ताल्लुक होता है रिश्तेदारी या रिश्ता होता है। रिश्तेदारी तो इंसानों के बाहमी ताल्लुक के बारे में कहते हैं ना, लेकिन रिश्ते का लफ्ज इस्तेमाल कर सकते हैं अल्लाह ताला के साथ रिश्ते के लिए। तो उसके बारे में काफी सारी बात पहले भी हुई है और इंशाल्लाह आज भी होती रहेगी कि ये ताल्लुक जो होता है वो सबसे ज्यादा आसान भी होता है बनाना, और दूसरी वजह ये भी कि इसको सबसे पहले डिस्कस करने की कि अगर ये ताल्लुक अच्छा हो जाए तो फिर बाकी ताल्लुक भी अच्छे हो जाते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला फिर सारे ताल्लुकात को अच्छा बना देते हैं। ठीक है, वही एक जात है जिनके पास इतनी कुदरत है कि वो दूसरे ताल्लुकात को हमारे दुरुस्त कर दें, अच्छा बना दें। बाकी किसी के अंदर इतनी कुदरत होती ही नहीं है कि वो किसी के साथ ताल्लुक को हमारा अच्छा बना दे। तो रिश्ते को कायम करने वाली अहम चीजें ये हमने पीछे पढ़ी थी, तीन नुक्ते हजरत ने लिखे थे या फरमाए थे अपने बयान के अंदर कि तवज्जो से बात सुनना, लिसन केयरफुली। दूसरा था कि जो बात आप सुन रही हैं तो साथ साथ जो है उन एहसासात को भी समझने की कोशिश करें कि जिनके साथ कहने वाला बात कह रहा है। ठीक है, तो बस ऐसे ही सुनी अनसुनी करने के अंदाज में ना सुने, बल्कि समझने की भी कोशिश करें और उसके अंदर उतरने की भी कोशिश करें कि वो क्या वजह है या क्या एहसासात हैं जिसके साथ वो ये बात कर रहा है। और तीसरा नुक्ता था कि उनके असल मानी को भी समझने की कोशिश करें। ठीक है, एक होता है जज्बात और एहसासात को समझना, और एक होता है कि जो एक्चुअली बात की जा रही है तो इसकी तफसील क्या है, वो कहना क्या चाह रहा है, वो आपसे क्या तवक्को करता है वगैरह। ठीक है, तो वो अंडरस्टैंड रियल मीनिंग्स के अंदर फिर ये यानी थोड़ा सा फर्क, बजायर कोई फर्क नजर नहीं आता, लेकिन इन दोनों में ये फर्क बयान किया, डिटर्मिन फीलिंग्स के अंदर और अंडरस्टैंड रियल मीनिंग्स के अंदर। अच्छा, फिर इसके बाद हजरत ने एक जरा साइंसी तहकीक को बयान करना शुरू कर दिया था, दिल और जज्बात, और जज्बात का बाहमी ताल्लुक जो है तो वो हमने पीछे पढ़ लिया था इतना कि शुरू में जो साइंसदान होते हैं आजकल के साइंसदान जो के सिर्फ अपने मुशाहिदे और अपने तजुर्बात और अपनी अकल की बुनियाद पर चीजों को समझते हैं, ठीक है, वही की बुनियाद पर चीजों को नहीं समझते बल्कि सिर्फ अपने अकल और अपने नजर की बुनियाद पर चीजों को समझते हैं, ये कौन होते हैं? ये आज के दौर के साइंसदान होते हैं। जो मुसलमानों के दौर के साइंसदान होते थे वो ऐसा नहीं करते थे। ठीक है, वो पहले वही की बुनियाद पर चीजों को समझते थे, फिर उसके बाद उनकी तफसीलात जो है ना वो अपनी नजर और अपनी अकल की बुनियाद पर समझते थे। ठीक है, ये फर्क है। ठीक है, तो वही पहले आती थी और नजर बाद में आती थी, लेकिन आज के दौर के साइंसदान ये वही को तस्लीम ही नहीं करते, तो ये सिर्फ अपनी नजर पर ही एतमाद करते हैं। तो इन्होंने फिर कहा, ऐसे साइंसदानों ने कहा कि भाई ये जो इंसान के दिल जिस्म के अंदर एक दिल होता है ना, ये तो महज एक पंप होता है, खून को पंप करने का एक स्टेशन होता है, इधर से खून लेता है उधर से खून आगे भेजता है। ठीक है, वेन्स से, हमने जो बुनियादी बायोलॉजी पढ़ी थी अपने स्कूल में, तो वेन्स जो है ना वो खून प्रोवाइड करती हैं हार्ट के अंदर, और हार्ट जो है वो उस खून को आगे आर्टरीज के अंदर पंप कर देता है। मेरे ख्याल में यही होता है बाकी अल्लाह वालों। तो इन साइंसदानों ने कहा जी पंप से ज्यादा इसकी कोई हैसियत ही नहीं है, लेकिन फिर तहकीक करते रहे करते रहे करते रहे, तो फिर जो है वो इनको नजर आया कि जी 1970 के अंदर उनको नजर आया कि जी ये तो है ना कुछ इसका ब्रेन के साथ भी ताल्लुक है। ठीक है, कुछ ताल्लुक है, इधर से उधर सिग्नल्स भेजता है, उधर से इधर सिग्नल्स आते हैं। फिर उसके बाद 1991 के अंदर, 1991 के अंदर इनको ये बात समझ में आई कि दिल के अंदर अपना भी एक छोटा सा ब्रेन होता है। ठीक है, यानी इसका अपना एक लोकल ब्रेन होता है और इसका अपना एक लोकल नर्वस सिस्टम होता है। तो इसके जो जज्बात वगैरह होते हैं ना, ये अंदर ही अंदर भी कंट्रोल हो रहे होते हैं। हत्ता के 2014 के अंदर इतनी ज्यादा इनको बात और नजर आ गई कि जी पूरा एक न्यूरॉन्स का जाल बिछा हुआ होता है दिल के अंदर। ठीक है, तो अब हजरत ने ये साइंसी तहकीक बयान क्यों फरमाई एकदम से रिलेशनशिप मैनेजमेंट के टॉपिक के अंदर, क्योंकि इसका कुछ ना कुछ ताल्लुक तो बनता ही है रिलेशनशिप मैनेजमेंट के साथ। लेकिन इससे बड़ी वजह क्या होती है कि भाई हमारा ईमान जो है ना वो मजबूत हो जाए, कि हम जो जो हमें हमारे बड़े बताते हैं तो उनके ऊपर हमारा एतमाद जो है वो शैतान ने बहुत कमजोर कर दिया है। ठीक है, तो अब साइंसी तहकीक के ऊपर हमारा एतमाद इस दौर के अंदर बहुत ज्यादा मजबूत हो गया है। ठीक है, तालीमी निजाम और मीडिया की मेहनतों की वजह से साइंसी तहकीक और साइंसदानों के ऊपर, तो अब जो है ना वो साइंसदानों की तहकीक से अगर कोई वही की बात प्रूव होती हो या कोई हमारे बड़ों की बात प्रूव होती हो तो उसको बयान कर देने में हर्ज नहीं है, उसको इसी नीयत से बयान करते हैं ताकि हमारा ईमान जो है वो जो बहुत कमजोर हो गया है वो मजबूत हो जाए। ठीक है, तो वही फरमाया कि कुरान मजीद ने तो 1400 साल पहले बता दिया था, लहुम कुलूबुन याकिलून बिहा। ठीक है, कि कल्ब का ताल्लुक जो है वो अकल के साथ है। ठीक है, अच्छा, फिर उसके बाद एक तजुर्बा भी बाकायदा मेंशन किया कि भाई एक बंदा जो है वो उसका दिल जो है वो किसी दूसरे बंदे के दिल की जगह पर लगाया गया क्योंकि उसका दिल खराब हो गया था, तो उसके जज्बात और एहसास और उसका जो लाइफस्टाइल वगैरह था वो तब्दील हो गया। ठीक है, तो बहरहाल ये भी हमने पढ़ लिया था। अब उसके बाद अगला जो अनुमान है इसी इसी अनुमान के तहत कि दिल की तवज्जो पर साइंसी तहकीक, कि दिल जो है ना वो बकायदा अटेंशन कर सकता है, तवज्जो कर सकता है किसी दूसरे दिल के ऊपर। ठीक है, एक तो होता है ना कि अपने अंदर ही जो है वो दिल जज्बात को कंट्रोल करने का काम कर रहा है, अकल को कंट्रोल करने का काम भी कर रहा है, एक हद तक कर रहा है। ठीक है, एक होता है किसी दूसरे इंसान के दिल के ऊपर तवज्जो डालना। तो उस पे फरमा रहे हैं कि 2015 में अभी जो नई रिसर्च हो रही है, ये बयान हजरत का 2015 का है। ठीक है, जैम्बिया के मुल्क के अंदर रमजान मुबारक के एतिकाफ में ये बयान खवातीन की ये मजलिस में किए थे, यानी खवातीन वहां मौजूद नहीं थी लेकिन उनको ब्रॉडकास्ट किया जा रहा था, जहां भी वो घर में बैठी या किसी जगह में बैठी वो सुन रही थी। तो 2015 में ये बयान भी हुआ था, और उसी वक्त जो बिल्कुल लेटेस्ट रिसर्च हो रही है वो इस बात पर हो रही है कि हार्ट के अंदर ये जो छोटा सा ब्रेन है ना, हार्ट के अंदर जो छोटा सा ब्रेन है यानी 40,000 न्यूरॉन्स पर मुश्तमिल जो ब्रेन है, इस ब्रेन के अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड भी है। मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेट किसको कहते हैं, जिसके अंदर किसी चीज की तरफ खींचने की सलाहियत हो या किसी चीज को अपनी तरफ खींचने की सलाहियत हो, इसको मकनातीस कहते हैं। ठीक है, तो मकनातीस दोनों काम करता है, लोहा अगर बड़ा होगा ठीक है तो क्या होगा, मकनातीस छोटा होगा लोहा बड़ा होगा तो क्या चीज किसकी तरफ खींचेगी, मकनातीस लोहे की तरफ खींच जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से अगर लोहे का पीस छोटा होगा और मकनातीस बड़ा होगा तो क्या होगा कि लोहे को ये अपनी तरफ खींच लेगा। ठीक है, तो मकनातीस खाली ये नहीं होता कि हर चीज को अपनी तरफ खींच ले, बल्कि मकनातीस ये भी होता है कि ये किसी दूसरी चीज की तरफ खींच जाए। ठीक है, ये बात समझ में आ गई ना सबको? मकनातीस का मतलब क्या होता है? खींचना। अब ये दूसरी तरफ खींचे या किसी को अपनी तरफ खींचे, दोनों सूरतों में इसको मकनातीस कहेंगे। तो अब जो ब्रेन का यानी हार्ट्स ब्रेन के अंदर, फिर इसको साइंसदानों ने नाम रख दिया कार्डियो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, कार्डियो दिल की चीजों को साइंसी जुबान में कार्डियो कहते हैं, होगा इसका कोई लैटिन वगैरह के साथ ताल्लुक, क्योंकि इनकी ज्यादातर साइंटिफिक टर्म्स जो होती है ना वो लैटिन वगैरह से आती हैं, लैटिन लैंग्वेज से, लातीनी जुबान से आती हैं। तो कार्डियो इलेक्ट्रो मैग्नेटिक फील्ड इसको कहते हैं, दिल का बर्की मकनातीसी मैदान। ठीक है, यानी बकायदा एक मैदान, मकनातीसी मैदान उसको कहते हैं जो मकनातीस के इर्द गिर्द का जो एरिया होता है ना, जो जगह होती है जहां तक उसकी मकनातीसियत जाती है। ठीक है, जहां तक उसकी मकनातीसियत असर करती है, उस एरिए को उसका मकनातीसी मैदान कह देते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये कार्डियो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड दूसरे बंदे पर अपना असर भी डाल सकता है, जिस तरह मकनातीस लोहे पर असर डाल सकता है, ये फील्ड भी दूसरे बंदे को मुतासिर कर सकता है। ठीक है, दूसरे बंदे को, यानी जिस हर बंदे के अंदर एक हार्ट है ना, हार्ट के बगैर तो कोई बंदा नहीं रह सकता, तो उसके दिल को मुतासिर कर सकता है। तो दीन इस्लाम ने जो एक दिल से तवज्जो दूसरे दिल में ट्रांसफर होने का कॉन्सेप्ट दिया है, अब आहिस्ता आहिस्ता साइंस इसको भी मानने के लिए बिल्कुल तैयार है। ठीक है, इसको मानने के लिए भी बिल्कुल तैयार है। अब ये जो तवज्जो का कॉन्सेप्ट है, ये हमारे दीन के अंदर हमेशा से मौजूद है। ठीक है, हत्ता के ये बाकायदा कुरान मजीद के अंदर मौजूद है, कुरान मजीद के अंदर ये कॉन्सेप्ट मौजूद है, सराहतन अल्फाज में नहीं लेकिन वाकये के अंदर इसका क्लियर इशारा मिलता है। ठीक है, कौन सा वाला वाकया? तवज्जो वाला वाकया कुरान मजीद के अंदर। ठीक है, वैसे तो इशारतन तो बहुत सारे वाकया भी आप कह सकते हैं, लेकिन एक सराहतन जो वाकया इशारा करता है इस तरफ, सराहतन इशारा करता है, वो क्या? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का जो जादूगरों के साथ मुकाबला हुआ था। ठीक है, जादूगरों के साथ जो मुकाबला हुआ था ना, तो उसके अंदर जादूगरों ने तवज्जो डाली थी। ठीक है, पूरे के पूरे मजमे के ऊपर तवज्जो डाली थी, जितने लोग वहां पे मौजूद थे, ठीक है, या जितने लोग भी देख रहे थे उनको, उन सब पे तवज्जो डाली थी। और इसका असर क्या हुआ था उनके ऊपर, कि उनकी आंखें जो हैं वो रस्सियों को सांप समझना शुरू हो गई थी, रस्सियों को सांप समझना शुरू हो गई थी, हालांकि वो सांप ना तो थी ना वो सांप बन गई थी, सांप नहीं बनी थी, वो रस्सियां ही थी। ठीक है, तो ये तवज्जो की दलील जो है वो कुरान मजीद से इस तरीके से हमें मिलती है, कि वो दिलों के ऊपर ऐसी तवज्जो डाली थी कि उसका असर जो है फिर दिल ने जो है वो दिमाग पे किया, दिमाग से जो है वो आईज कंट्रोल होती हैं, और आईज जो है वो ऐसे देखना शुरू हो गई थी जैसे कि वो चीज हकीकत में नहीं थी। ठीक है, और उसके अलावा तो हमारे मशायख के यहाँ तो तवज्जो का बहुत ज्यादा इसका जिक्र होता है, और नबी अलैहिस्सलाम की हदीस से भी तवज्जो का जिक्र मिलता है, और दोनों तरफ की तवज्जोहात का जिक्र मिलता है। क्या मतलब दोनों तरफ की तवज्जोहात का जिक्र का क्या मतलब? मुस्बत भी और मनफी भी, मुस्बत भी और मनफी भी, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। ठीक है, पॉजिटिव का अस का कैसे मिलता है कि नबी अलैहिस्सलाम की सुहबत में जो सहाबा आकर के रहे। ठीक है, तो अगरचे के हर सहाबी का दिल अपना अलग दिल था, ठीक है, हर सहाबी का दिल अलग दिल था और नबी अलैहिस्सलाम का दिल अलग था, दोनों अलग अलग जिस्मों में रहते थे, लेकिन सुहबत का असर किया हुआ कि वो सहाबी बन गए और अल्लाह ताला से शदीद मोहब्बत करने वाले बन गए। ठीक है, तो ये हुई अच्छी सोबत। फिर एक और भी सराहतन भी वाकया है कि एक सहाबी आए और उन्होंने नबी अलैहिस्सलाम से गुनाह की इजाजत मांगी, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम ने उनके दिल के ऊपर, सीने के ऊपर हाथ रख करके फिर उनको दुआ दी। उनके दिल से गुनाह की आरजू ही खत्म हो गई और वो गुनाह उनके दिल में नफरत वाली चीज बन गया, काबिल नफरत चीज बन गई। ठीक है, तो तवज्जो, अच्छी तवज्जो इस तरीके से सहाबा के दिल पे नबी अलैहिस्सलाम से पड़ी। ठीक है, उसी तरह से बुरी तवज्जो का हदीस के अंदर कैसे जिक्र मिलता है कि नबी अलैहिस्सलाम से ये हदीसें मनकूल हैं, जिसका मफहूम बनता है कि जब तुम किसी बुरी सोहबत में जाते हो तो ये ऐसे ही है कि जैसे किसी भट्टी में जाते हो, भट्टी जहां पर के आग में मेटल को पिघलाया जा रहा होता है और मेटल से चीजें बनाई जा रही होती है, तो उस भट्टी में जब तुम जाते हो तो अगर तुम्हारे कपड़े ना भी जले, वहां से निकलने वाली चिंगारियों से अगर नहीं भी जले, फिर भी उनका धुआं तो तुम्हें लगता ही है। ठीक है, तो भाई भट्टी का धुआं लगता है ना, उसी तरीके से बुरे इंसान या बुरे आमाल करने वाले इंसान की सोहबत में जब तुम रहते हो तो उसकी सोहबत का तुम्हारे दिल के ऊपर भी असर पड़ता है। ठीक है, उसी तरीके से अच्छी सोहबत में जाते हो तो इसकी मिसाल ऐसी फरमाई कि जैसे कि तुम किसी अत्तार की दुकान पे जाते हो, ठीक है, इतर बेचने वाली की दुकान पे, अगर तुम वहां जाके इतर नहीं भी खरीदते फिर भी उसकी खुशबू तुम्हारे कपड़ों में बस जाती है। ठीक है, तो ये सब का सब क्या है, ये सोहबत का असर है, और सोहबत का असर मीन्स दिल का दिल के ऊपर असर। तो बुरे दिल का भी दिल पे असर पड़ रहा होता है और अच्छे दिल का भी दिल के ऊपर असर पड़ रहा होता है। तो फरमा रहे हैं कि साइंस भी इस बात को मानने के लिए, तो यानी एम्पेरिकली इट कैन बी प्रूव, इट कैन बी प्रूवन विद एविडेंस, साइंटिफिक एविडेंस, जिसको ये एम्पेरिकल एविडेंस कहते हैं। तो कहते हैं कि हार्ट कैन ट्रांसफर एनर्जी टू द अदर हार्ट, एनर्जी, तो ये अच्छी एनर्जी भी हो सकती है, ये बुरी एनर्जी भी हो सकती है। ठीक है, यानी तवज्जो एक दिल से दूसरे दिल तक जा सकती है। फरवरी 2014 में इस पर एक रिसर्च पेपर पढ़ा गया जो इस वक्त इंटरनेट पर मौजूद है। दिल पर बहुत रिसर्च की गई और जो जो शरीयत ने कहा था बिल आखिर साइंस ने उसको तस्लीम कर लिया। ठीक है, तो इसी वजह से हमें जो है वो इस कॉन्सेप्ट को बहुत समझने की जरूरत है, ताकि हम जो है वो अपने आप को भी अच्छी सोहबत का हिस्सा बना सकें, बुरी सोहबत से अपने आप को भी बचा सकें। ठीक है, इस बात पे यकीन होना चाहिए, बिल्कुल एतमाद होना चाहिए कि भाई अच्छी सोहबत का असर पड़ेगा, बुरी सोहबत का असर पड़ेगा। ठीक है, तो इस वजह से ये नहीं समझना है कि मैं तो बहुत अच्छी हूं तो मैं जितनी ही बुरी सोहबत में जाऊं मुझे कुछ नहीं होने वाला है, हरगिज हरगिज नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ये बात तो बिल्कुल ही अपने दिल से निकाल दें कि मेरे ऊपर कोई असर नहीं होगा। ठीक है, उसी तरीके से ये भी बात दिल से निकाल देनी चाहिए कि मैं बहुत बुरी हूं, अच्छी सोहबत में जाऊंगी तो मुझे तो कोई फायदा नहीं होगा, नहीं फायदा होगा। ठीक है, अच्छा इसकी थोड़ी सी इसके अंदर तफसील है, वो अभी बाद में बात करते हैं, लेकिन पहले एक दूसरी बात कि इसको हम ऐसे यकीन कर लें इस बात के ऊपर कि हम अपने आप को भी इसके मुताबिक चला सकें और अपनी औलाद को भी इसी के मुताबिक, औलाद को भी इसी के मुताबिक। ठीक है, कि औलाद के लिए अच्छी सोहबत का एहतमाम करें, उनको अच्छी सोहबत मुहैया करने की कोशिश करें और बुरी सोहबत से बचाने की जितनी हमारे लिए मुमकिन है कोशिश करें। ठीक है, अच्छी सोहबत का इंतजाम करना और बुरी सोहबत से औलाद को बचाना, ये वालिदैन की जिम्मेदारी है। ठीक है, और अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो फिर उसका जो नतीजा उनके औलाद के ऊपर आएगा तो इसके फिर वो खुद जिम्मेदार। ठीक है, लेकिन अगर उन्होंने अपनी तरफ से मेहनत पूरी कर ली फिर उसके बाद औलाद ने बात नहीं मानी या उसने जो है वो बाद में जो भी हुआ फिर वो उसके जिम्मेदार नहीं, फिर उनसे वास्कोर्स नहीं होगी, फिर उनको इसकी सजा नहीं मिलेगी, लेकिन अगर उन्होंने अपनी तरफ से नहीं किया तब तो मिलेगी। ठीक है, अब इसके ऊपर एक बहुत अहम बात ये भी जान लें, सुनती हो आपने काफी कुछ लिया है इस वक्त ऑलरेडी, लेकिन कितना याद रहा है, कुछ लिखा है किसी ने कुछ अपने पास? ठीक है, इन बातों को अगर आप लिखेंगे नहीं ना तो वक्त गुजारी से ज्यादा इस लेक्चर की कोई हैसियत नहीं। ठीक है, एक कान से अंदर जाएगी, दूसरे कान से निकल जाएगी और फिर वापस नहीं आएगी। ठीक है, तो इन बातों को साथ साथ लिखने की कोशिश करें, या जिस कोशिश कर रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता बात भी करें, वरना उमूमन ऐसा नहीं हो पाता है, लेकिन अभी तो कम अज कम हो रहा है। ठीक है, तो कुछ पॉइंट्स को अपने पास लिखें भी और फिर उसको बाद में एक नजर देखें भी, तब जो है वो बात समझ में आएगी और फायदा इससे होगा, वरना नहीं होगा। ठीक है, तो एक और बात इंतहाई अहम यहां पर समझने की जरूरत है बहुत ज्यादा, वो ये है कि एक चीज होती है किसी के साथ उठना बैठना, ठीक है, किसी के साथ वक्त गुजारना, ये भी सोहबत ही होती है, ये भी सोहबत होती है। ठीक है, आप किसी के साथ उठना बैठना, यानी उनके साथ डिनर्स डिनर्स के अंदर मुलाकातें हो रही हैं, उनके साथ जो है वो किसी और जैसे स्कूल कॉलेज के अंदर मुलाकातें हो रही हैं, या वर्क प्लेस के अंदर मुलाकातें हो रही हैं, या खानदानी तकरीबात के अंदर मुलाकातें हो रही हैं, या ऐसे ही दावतों के अंदर मुलाकातें हो रही हैं, ठीक है, या किसी क्लास के अंदर मुलाकातें हो रही हैं, हत्ता कि दीनी क्लास के अंदर मुलाकातें हो रही हैं, ठीक है, तो ये भी सोहबत ही होती है और इसका भी एहतमाम जरूरी है कि इसमें भी ख्याल रखें कि नेकों के साथ उठना बैठना, ठीक है, और नेक निस्बत वाले, मतलब नेक बहुत दिल के बहुत ज्यादा अल्लाह के वली ना भी हूं, लेकिन बजाहिर तो दीनदार होना, ठीक है, बजाहिर तो दीनदार होना कि भाई फराइज की पाबंदी करने वाले हो, नमाज पढ़ने वाले हो, ठीक है, औरतें हैं तो नमाज के साथ साथ पर्दा करने वाली हो, ठीक है, और फासिक और फाजिर लोगों की नकाली करने वाली ना हो, ठीक है, नकाली यानी उनको कॉपी करने वाली ना हो, चाहे लिबास में कॉपी करना हो, चाहे बोल चाल में कॉपी करना हो, ठीक है, ऐसी ना हो। ठीक है, अगर ऐसे लोग हैं तो उनके साथ उठना बैठना जो है वो कम करें, कम करें, हत्ता के अगर खत्म कर देना मुमकिन है तो खत्म कर दें। ठीक है, किनके साथ, जो कि फराइज की पाबंदी ना करते हो और जो फासिक फाजिर या काफिर, फासिक फाजिर या काफिर लोगों की नक्काली करते हो, ठीक है, तो उनके साथ उठना बैठना कम करें। ठीक है, अगर क्लोज रिश्तेदारी है तो खत्म नहीं कर सकते लेकिन कम कर सकते हैं, ठीक है, खत्म करीबी रिश्तेदारों के साथ नहीं कर सकते लेकिन कम कर सकते हैं, और जिनके साथ रिश्तेदारी का ताल्लुक नहीं है तो उनके साथ तो खत्म ही करने की कोशिश करें, ठीक है, क्योंकि ये सोहबत है और सोहबत का असर आपके ऊपर होगा या आपके बच्चों के ऊपर होगा, ठीक है, फिर बाद में रोने धोने का कोई फायदा नहीं है, लोग कहें हम तो नहीं रोते, हम तो बड़ा अच्छा बड़ा जबरदस्त काम करें, आप रोएंगे, आप फिक्र ना करें, आप रोएंगी, ये तो आप लिख के अपने कहीं पे लटका दें अपने घर के अंदर, आप रोएंगी, हाँ दुनिया में अगर नहीं भी रोई, अगर नहीं भी रोई आखिरत में तो रोएंगी, आखिरत में तो रोएंगी, कुछ लोग तो डर के क्लास ही छोड़ गए ना मुख्य पेपर बहरा, तो रोना तो आपने है अगर आप ये बात नहीं मानी, दुनिया में नहीं रोएंगे तो आखिरत में रोएंगे, कब्र में रोएंगे, रोना तो है, ठीक है, तो ये बात जो है ना वो लिख के कहीं लटका लें कि सोबत को जो है ना वो जहां तक रिस्ट्रिक्ट कर सकती हैं करें, और जहां पर छोड़ सकती हैं तो वहां पे छोड़ दें, वरना आप रोएंगी, आपकी औलाद आपको रुलाएगी, ठीक है ना, आप कोई ना कोई आपको रुलाएगा, आप रोएंगी, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गई सोहबत की बात, जिनके साथ आपका उठना बैठना होता है, और एक दूसरी चीज होती है जो कि इससे ज्यादा स्ट्रोंगर होती है, सोहबत से भी ज्यादा स्ट्रोंगर होती है, उसको क्या कहते हैं अगर आपसे हम पूछें? सोहबत से भी ज्यादा जो मजबूत चीज होती है उसको क्या कहते हैं और वो क्या होती है? उन्होंने लिखा ताल्लुक। अच्छा, और जी दोस्ती कहते हैं उसको, ठीक है, दोस्ती। ये दोस्ती जो होती है ना, ये किसी ने मोहब्बत भी जवाब दिया है, लेकिन दे आर द वन एंड द सेम थिंग, ये अलग अलग चीजें नहीं है। दोस्ती इज इक्वल टू मोहब्बत, मोहब्बत इज इक्वल टू दोस्ती, ये अलग अलग चीजें नहीं है। ठीक है, तो एक चीज होती है, ठीक है, ये मोहब्बत जो होती है ना, यानी ये जो दोस्ती होती है ना, ये तो हर उठने बैठने वाले के साथ भी नहीं करनी, ठीक है, हर उठने बैठने वाले के साथ भी नहीं करनी दोस्ती, ठीक है। तो क्या मतलब भाई, जब उठना बैठना हो रहा है तो फिर दोस्ती कैसे नहीं करें? क्योंकि दोस्ती का मतलब ही कुछ और होता है, ठीक है। अब जब तक हम इस लफ्ज दोस्ती को नहीं समझेंगे, तो उस वक्त तक हम इस बात को नहीं समझ सकते। देखें, दोस्ती जो होता है ना, ये एक गहरे कल्बी ताल्लुक को कहते हैं, कल्बी ताल्लुक, दिल का रिश्ता, ठीक है, गहरा दिल का रिश्ता। जिनके साथ आपकी सोहबत होती है ना, उनके साथ भी दिल का रिश्ता होता है, उनके दिल का आपके दिल पे असर होता है, आपके दिल का उनके दिल पे असर होता है, डिपेंडिंग ऑन कौन सा वाला ज्यादा मजबूत है, ठीक है, कौन सा वाला दिल ज्यादा मजबूत है अपने नजरियात के बारे में, वो दूसरे के ऊपर असर डालता है, ठीक है, वो कच्चे दिल के ऊपर असर डालता है, ठीक है। मिसाल के तौर पर आप कहें कि जी मैं ज्यादा नेक हूं ना, तो मैं दुनियादार लोगों के साथ जब बैठूंगी ना, तो मैं उन पर असर डालूंगी, ठीक है, तो ऐसे नहीं होता कि जो आप नेक हैं तो वो आप जो है वो गुनाहगार लोगों के ऊपर असर डालेंगी, नहीं, बल्कि गुनाहगार लोगों का गुनाह के साथ कितना मजबूत ताल्लुक है और आपका नेकी के साथ कितना मजबूत ताल्लुक है, इस पर डिपेंड करता है, इस पर डिपेंड करता है। अगर आपका नेकी के साथ ज्यादा मजबूत ताल्लुक है, क्या मतलब कि आप का यकीन है नेकी के ऊपर, आखिरत के ऊपर, हत्ता के अगर आपके ऊपर कोई मुसीबत भी आती है ना, तो आप नेकी का रास्ता नहीं छोड़ती, बल्कि इस्तकामत के साथ नेकी को पकड़े रहती हैं, ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि आपका नेकी के साथ मजबूत था, ठीक है। लेकिन अगर जरा सी मुसीबत आती है, जरा सी मुश्किल आती है, फौरन नेकी छूट जाती है, फर्ज छूट जाता है और गुनाह करना शुरू हो जाते हैं, इसका मतलब यह है कि नेक तो आप शायद थी थोड़ी बहुत, लेकिन मजबूत ताल्लुक नहीं है आपका नेकी के साथ, आपका नेकी के साथ मजबूत ताल्लुक नहीं है, बल्कि कच्चा ताल्लुक है, ठीक है ना, फौरन जो है वो वजू टूट जाता है, ठीक है ना, बस वजू टूट जाने का एक मुहावरा है, मतलब ये कि आपकी नेकी वेकी सब खत्म हो जाती है जहां थोड़ी सी मुसीबत आती है, ठीक है, और वही ऑल फॉल जो है वो जुबान से झड़ने शुरू हो जाते हैं, इसका मतलब ये है कि आप नेक जो है ना, वो बहुत ही कच्चा ताल्लुक है आपके नेकी के साथ। लेकिन जो गुनाहगार है, उसका गुनाह के साथ कैसा ताल्लुक है? उसका गुनाह के साथ ऐसा ताल्लुक है कि अच्छे हालात हो तो भी वो गुनाह करता है, बुरे हालात हो तो भी वो गुनाह करता है, अल्लाह के फराइज को छोड़ता है, ठीक है, चाहे उसके ऊपर मुसीबत आए फिर भी वो फराइज को छोड़ रहा होता है, इसका मतलब क्या है कि उसका गुनाह के साथ बहुत मजबूत ताल्लुक है, जबकि आपका नेकी के साथ मजबूत ताल्लुक नहीं है, ठीक है। तो अब जब आप और वो एक सोहबत में बैठेंगे ना, तो आपका असर उस पर नहीं पड़ेगा, बल्कि उसका असर आप पर पड़ेगा, क्योंकि उसका अपने नजरियात के साथ ज्यादा मजबूत ताल्लुक है, जबकि आपका अपने नजरियात के साथ कमजोर ताल्लुक है। तो यहां पर असर कौन किसके ऊपर डालेगा? जिसका अपने नजरियात के साथ मजबूत ताल्लुक है वो कमजोर ताल्लुक वाले के ऊपर अपना असर डालेगा, ठीक है, क्या मुश्किल बात है, समझ में आ गई सबको, ठीक है। तो ये तो आम सोहबत के अंदर ऐसा होता है, ये तो आम सोहबत में ऐसा होता है, ठीक है, यानी उठना बैठना, दावत में मिलना जुलना, मजलिस के अंदर आना जाना, ठीक है, या बाजार में एक साथ चले जाना, ठीक है, या जो है वो स्कूल कॉलेज के अंदर एक साथ जो है वो वक्त गुजारना, ये तो आम सोहबतें होती है ना। तो इस आम सोहबत में भी ऐसे असर पड़ता है, ये प्रिंसिपल है असर डालने का। लेकिन एक चीज होती है दोस्ती। दोस्ती का मामला क्या होता है कि ये तो एक खसूसी कल्बी ताल्लुक होता है, गहरा कल्बी ताल्लुक होता है, ठीक है। और इसकी कैसे समझ में आएगा कि गहरा कल्बी ताल्लुक हो गया, कैसे बात आप कैसे गेज करेंगी, कैसे ये डिटरमिन करेंगी कि ये एक आम सोहबती ताल्लुक है या ये गहरा दोस्ती वाला ताल्लुक है? कौन बताएगा जी आप में से, कैसे आप ये डिटरमिन करेंगे? माशाल्लाह, ठीक है, उन्होंने एक अच्छा जवाब दिया। और भी जवाब इसके हो सकते हैं कि जिनसे मिलने का दिल चाहे, यानी जिनके बगैर जो है ना आपको तकलीफ हो, तो बस किसी तरह मैं उड़ के उसके पास पहुंच जाऊं, ये कहते हैं दोस्ती का ताल्लुक। उससे बात करने का दिल चाहे, ठीक है, और दिल भी ऐसा नहीं बल्कि बहुत ज्यादा चाहे दिल, वरना तो आम सोहबत वालों के साथ भी दिल चाहता है बात करने का, ठीक है, लेकिन इनके साथ बात करने का ऐसा कि इसके बगैर आपसे रहा ना जाए, ठीक है, इससे मिले बगैर रहा ना जाए, इससे बात किए बगैर रहा ना जाए, इसको दोस्ती का ताल्लुक कहते हैं। और बताएं, लाइक्स और डिसलाइक्स जो है वो सेम हो जाए, माशाल्लाह, ठीक है, ये तो फिर आगे जाके होते हैं ना कि फिर आपकी लाइक्स और डिसलाइक सेम हो जाती हैं, ठीक है, और उनके साथ उठने बैठने की ख्वाहिश, ये बात भी हो चुकी है, मिलने और बात करनी भी हो चुकी है, जिनको राजी करने का दिल चाहे, माशाल्लाह, जो अगर नाराज हो जाए तो आप बर्दाश्त ना कर सके उसकी नाराजगी को, ठीक है, आप बर्दाश्त ना कर सके उसकी नाराजगी को, इसको दोस्ती का ताल्लुक कहते हैं। उनकी बार बार याद आए, चलें ये भी ठीक है, सीक्रेट शेयर, हाँ सीक्रेट शेयर करने का दिल चाहे, ए? बच्चियां जो है वो उसको सीक्रेट्स कहती हैं, लेकिन आमतौर पर इसको कहा जाता है दिल की बात, ठीक है, दिल की बात शेयर करने का दिल चाहे आपको, यू फील फ्री अराउंड देम टू शेयर एनीथिंग विद देम। एग्जैक्टली, क्या होता है दोस्ती के ताल्लुक में, इधर कोई बात सुनी फौरन दोस्त को जाके बताना है, ठीक है ना, इधर कोई बात पता चली फौरन दोस्त को बताना है, फौरन उसके साथ शेयर करना है, ठीक है, तो ये है दोस्ती का ताल्लुक, ठीक है, कि उससे मिलने का बहाना तलाश कर रहे हो, उससे बात करने का बहाना तलाश कर रहे हो, अगर वो नाराज हो जाए तो उसको राजी करने की फिक्र में लग जाए, ठीक है, और जहां कोई चीज पता चले फौरन उसको बताए, फौरन उसके साथ शेयर करें, इसको दोस्ती का ताल्लुक कहते हैं। ये बात हम क्यों आपके साथ इतनी तफसील के साथ कर रहे हैं, उसकी वजह यह है कि सोहबत तो हमने बजाहिर अच्छे लोगों के साथ बनानी है, बुरी सोहबतों को हमने रिस्ट्रिक्ट करना है या खत्म कर देना है जहां मुमकिन हो खत्म कर देना है, लेकिन दोस्ती जो है ना ये तो बहुत फूंक फूंक करके करने की चीज है, बहुत ज्यादा इसके अंदर यानी क्रिटिकल होना इंतहाई जरूरी है कि भाई दिल तो मैंने नहीं लगाना है किसी के साथ, या अपने बच्चों को ये बात समझानी है कि बेटा हम उठते बैठते हैं नेक लोगों के साथ, लेकिन इवन नेक लोगों में भी जो आपको बजाहिर नेक नजर आ रहे हैं उनके घर में जो है वो फिल्में और गाने और डांस और म्यूजिक ये सब नहीं होता, हम उनके साथ उठते बैठते हैं, ठीक है, जहां पर जो है वो काफिर फाजर फासिक लोगों को जो है वो आइडियलाइज नहीं किया जाता, हम उनके साथ उठते बैठते हैं, लेकिन हमने फिर भी दोस्ती नहीं करनी है, हमने हर एक से दोस्ती नहीं करनी है, दोस्ती के लिए तो हमें बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया बताए गए, ठीक है, इसकी बेहतरीन जो तफसील है ना वो आपको मिलेगी बहश्ती जेवर किताब के अंदर, बहश्ती जेवर हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह की किताब, ठीक है, उसके अंदर हजरत ने पूरा मजमून लिखा है, अखलाकियात का पूरा जो टॉपिक है बिल्कुल शुरू के अंदर ही, तो उसमें जो है आम लोगों के साथ मामला, उसके अंदर जो है ना हजरत ने तीनों कैटेगरीज लोगों की लिखी है जिनके साथ इंसान का मामला होता है। उनमें एक कैटेगरी तो वो है कि जिनके साथ आपका बस किसी जरूरत के तहत जो है ना वो बातचीत होती है, और उससे ज्यादा और कोई चीज नहीं होती, आपका कोई लेना देना नहीं होता, जैसे घर में काम करने वाले के लिए लोग आते हैं, काम करने के लिए लोग आते हैं, चाहे मासी हो, चाहे जो है वो हाउस बॉय हो, चाहे जो है वो प्लम्बर हो, चाहे जो है वो और कोई इस किस्म की मेड हो, ठीक है, ये भाई एक जरूरत का एक है, वो आए उसके बाद चले गए, ये ऐसे एक कैटेगरी होती है लोगों की। दूसरी कैटेगरी वो होती है कि जिनको के आम मिलने जुलने वाले लोग कहा जाता है, ठीक है, जैसे अभी तफसील के साथ बात हुई है। और तीसरी कैटेगरी होती है दोस्ती वाली। दोस्ती के लिए हजरत ने 5 शराइत लिखी हैं, और बाप रे कितनी जबरदस्त शराइत लिखी हैं, बेहतरीन, कि इन 5 शराइत पर जो पूरा उतरता है सिर्फ उससे दोस्ती कर सकते हैं, उसके अलावा किसी से दोस्ती नहीं कर सकते, चाहे वो दाढ़ी वाले हो चाहे वो बुरके वाली हो। अगर वो इन 5 शराइत पूरी नहीं उतर रही है, हमने उनसे दोस्ती नहीं करनी है। क्या मतलब? हमने उनसे दिल की बातें शेयर नहीं करनी है, हमने उनसे मिलने के बहाने तलाश नहीं करने के, हम यानी अब हम इतनी उनके साथ नहीं फ्री हो सकते कि ये मामला हो जाए कि अब तो उनके बगैर जो है वो गुजारा ही नहीं होता, नहीं, ठीक है। क्योंकि दोस्त जो होता है ना, उसका मामला क्या है, ये सारी क्यों इतनी इतनी ज्यादा यानी एहतियात करने की जरूरत क्यों है, इतनी एहतियात करने की जरूरत क्यों है, उसकी वजह यह है कि मुझे एग्जैक्टली इस वक्त याद नहीं आ रहा कि यह हदीस एग्जैक्टली है या ये मुहावरा है, अगर कोई मेरी इसलाह कर सके। हदीस है ये, अलमरु अला दीनी खलीली, अलमरु अला दीनी खलीली, कि इंसान तो अपने दोस्त के दीन पर होता है। ठीक है, आपने उर्दू तर्जुमा भी माशाल्लाह लिख दिया है, इंसान तो अपने दोस्त के दीन पर होता है। ठीक है, तो जिसको दोस्त बना लिया ना, अब उसके दीन जो है वो आपका दीन बन जाएगा। अब अगर उसका दीन कुफर वाला दीन है या फिस्क व फुजूर वाला दीन है, तो आपका भी दीन फिस्क व फुजूर वाला या कुफर वाला दीन बन जाएगा। और अगर उसका दीन जो है वो नेकोकारी का, तकवा परहेजगारी का दीन है, तो आपका भी दीन जो है वो ऐसे ही बन जाएगा। ठीक है, जज़ाकुम अल्लाह। सही है, तो भाई दीन की बुनियाद पर तो फिर आखिरत का फैसला होना है, हमेशा हमेशा की जिंदगी का फैसला होना है। ठीक है, तो इस मामले में हम नहीं वो नहीं हो सकते, ढीले नहीं हो सकते, हल्के नहीं हो सकते, और अपनी औलाद को बिल्कुल ऐसी समझाना। ठीक है, ये बात बहुत 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 अहम है, क्योंकि हम देख रहे हैं, देखते ही हैं कि भाई वो लोग समझते हैं कि जी अच्छा, ये तो पहले तो फिक्र ही कोई नहीं होती सोबत वोबत की, लेकिन जहां सोबत की फिक्र पड़ भी जाती है ना, समझ में भी आ जाता है कि हाँ भाई अच्छी सोबत चाहिए, अपने लिए भी चाहिए, अपने औलाद के लिए भी चाहिए, तो वहां पर भी जा करके ये दोस्ती के मामले में जो है ना, वो बहुत रिलैक्सेशन। ठीक है भाई, दोस्ती की कोई जरूरत नहीं है। एक बात और भी समझ लें, ये कुछ जाहिलों ने या कुछ बेवकूफों ने या नॉन मुस्लिम्स ने ये हमें समझा दिया है, पढ़ा दिया है कि जी जितने दोस्त होंगे उतनी अच्छी चीज होगी, उतना अच्छा मामला हो। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस बात को बिल्कुल भी जो है ना, वो हकीकत मत समझें कि ज्यादा दोस्त होना जो होता है ये बड़ी कामयाबी की अलामत होती है। हरगिज नहीं, ये कामयाबी की अलामत नहीं होती है। ठीक है, कोई जरूरत नहीं है दोस्त बनाने की। ठीक है, नबी अलैहिस्सलाम ने किसी को दोस्त नहीं बनाया, हत्ता के सहाबा भी जो है ना, नबी अलैहिस्सलाम के दोस्त नहीं थे, वो सहाबी थे। दोस्त नबी अलैहिस्सलाम ने सिर्फ अल्लाह को बनाया। ठीक है, तो नबी अलैहिस्सलाम क्या क्या थे आपके ख्याल में, कामयाब थे कि नाकाम थे? अगर हम नबी अलैहिस्सलाम को कामयाब नहीं समझते, तो फिर अपने ईमान की खैर मनाए। ठीक है, किसी को दोस्त नहीं बनाया, अल्लाह को दोस्त बनाया। उसी तरीके से हम अपने अकाबरीन को देते हैं, देखते हैं वो बहुत लोगों के साथ मिलते जुलते हैं और अच्छे लोगों के साथ ही उठते बैठते हैं, लेकिन उनकी दोस्ती जो है ना, वो एक आद से ही होती है और बस, और किसी से उनकी दोस्ती नहीं होती। हम अपने हजरत को देखते हैं, आज सुबह जो है वो एक साथी से बात भी हो रही थी, हजरत को देखते हैं, एक तो बात कंफर्म है कि वो खुद फरमाते हैं कि सारा जो मेरा स्कूल का टाइम गुजरा है उसमें मेरा सिर्फ एक लड़का दोस्त था, वो भी कौन था, जिसकी मेरे बड़े भाई ने मुझे इजाजत दी थी, बस उसके अलावा कोई मेरा दोस्त नहीं था। ठीक है, मेरा कोई दोस्त नहीं था उस एक लड़के के अलावा। और उसके बाद जब स्कूल का टाइम खत्म हो गया, तो अब हम देखते हैं बहुत सारे हजरत के मिलने जुलने वाले होते हैं, मुझे तो कोई भी हजरत का ऐसा नजर नहीं आया जो कि हजरत का दोस्त कहलाने के काबिल, दोस्त कहलाने के काबिल, ऐसा तो कोई भी नहीं नजर आया कभी। ठीक है, तो भाई दोस्त ठीक है, एक आध को बना लें, लेकिन ये क्या है कि भी हर एक के साथ जहां बैठे उधर ही दिल की बात शुरू कर दी, जहां बैठे उधर ही जो है वो तड़प रहे हैं उनसे मिलने के लिए, तड़प रहे हैं उनसे जो है वो बात करने के लिए, ठीक है। और वो यानी ये सारी बिल्कुल भी इसकी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अबू तालिब आप अलैहिस्सलाम के चचा का आखिरी वक्त में इस्लाम कबूल करने के रहा था, लेकिन दोस्ती की वजह से महरूम हो गए। हाँ, दोस्त तो फिर इंसानों को कहीं का नहीं छोड़ता ना, हाथ पकड़ करके फिर वो गुनाह करवाता है, जबकि शैतान जो है वो हाथ पकड़ करके गुनाह नहीं करवाता है, दोस्त हाथ पकड़ करके गुनाह करवाता है। इसी वजह से इंतहाई एहतियात की जरूरत है, ठीक है। तो अपने बच्चों को भी समझाएंगे, बेटा कोई जरूरत नहीं है लोगों के साथ उठना बैठना, बातचीत कर लेना, ठीक है। और वो भी अगर आपको कोई बुरी बातें नजर आ रही है तो आप बातों को रोकने की कोशिश करें, ठीक है। अगर आप रोक नहीं सकते हैं तो आप उठ करके वहां से चले जाएं। ये क्या है कि भाई मैं अगर उठ के चली जाऊंगी या मैं उठ के चला जाऊंगा तो अब मेरी दोस्त कोई नहीं बनेगी, तो आई विल बी लेफ्ट अलोन, मैं तो अकेली रह जाऊंगी, राइट। या बच्चा समझ रहे हैं मैं तो अकेला रह जाऊंगा, मेरा कोई दोस्त नहीं होगा। अब वो लगे होते हैं कुछ बच्चे ना, अनफॉर्चुनेटली, राइट, अनफॉर्चुनेटली कुछ बच्चे लगे होते हैं ट्राइंग टू फिट इन, राइट, ऑलवेज ट्राइंग टू फिट इन, कि बस मेरे दोस्त बन जाए, बस मेरे दोस्त बन जाए। पता नहीं किसने उनको ये बात समझा दी होती है कि जितने तुम्हारे दोस्त होंगे उतनी अच्छी चीज होगी तुम्हारी। नहीं समझाएं ये बात अपने बच्चों को, नहीं बोले अपने बच्चों को ये कि तुम तो जो है ना वो कोई दुनिया की कोई अलग ही मखलूक हो, तुम्हारे देखो तुम्हारे कोई दोस्त ही नहीं है। ये जहालत की बात है, ये मत बोला करें अपने बच्चों बच्चियों को कि तुम्हारा तो कोई दोस्त ही नहीं है, तुम तो पता नहीं क्या हो। भाई अल्लाह का शुक्र अदा करें कि उसके बुरे दोस्त नहीं है, अल्लाह का शुक्र अदा करें कि उसके बुरे दोस्त नहीं है, ठीक है। बिल्कुल ऐसा ही है, जितने दोस्त ज्यादा होंगे उतनी डिस्ट्रैक्शन बढ़ जाएगा अल्लाह ताला से। तो भाई ये सब ठीक है, लेकिन नेक दोस्त होना वो जरूरी है, बुरे दोस्त होना उनसे बचना जरूरी है। तो दिल की बात चल रही थी तो इस बात को इसमें अहम समझ करके आपके सामने फिर से बयान कर दिया, वरना पहले भी बातें हो चुकी हैं इस टॉपिक के ऊपर। आगे जल्दी से हम चंद एक पॉइंट्स पढ़ लेते हैं कि औरत की जिंदगी में चार अहम रिश्ते, फिर वो पीछे भी हजरत उसको फरमा चुके थे, फिर से रिपीट कर रहे हैं इस बात को कि रिलेशनशिप मैनेजमेंट, रिश्तेदारी के नज़म में चार तरह के ताल्लुकात होते हैं जो बहुत अहम होते हैं। नंबर 1, एक होता है मियाँ बीवी का ताल्लुक, औरत की जिंदगी में इसकी सबसे ज्यादा अहमियत होती है। अब जैसे पहले भी बात हो चुकी है कि अल्लाह बंदी का ताल्लुक जो है हजरत ने वक्त की कमी की वजह से, क्योंकि 1 घंटे का बयान था, उसको इस बयान के अंदर नहीं रखा है, लेकिन हम उसके ऊपर बात कर चुके हैं। फिर मियाँ बीवी का ताल्लुक, ये सबसे ज्यादा अहम ताल्लुक होता है। दूसरा होता है ससुराल वालों से ताल्लुक, ससुराल वालों में ससुर के साथ, फिर नंदों के साथ, फिर घर के दूसरे अफराद के साथ, ये मुस्तकिल एक अलग ताल्लुक है, ठीक है, यानी इन लॉस के साथ जो ताल्लुकात होते हैं। फिर तीसरा ताल्लुक है माशाल्लाह सास के साथ, ये एक अलग, ठीक है, ये भी एक खास ताल्लुक है, यानी ससुराल का ताल्लुक अलग और सास का ताल्लुक अलग। तो इसकी अलग एक अपनी आइडेंटिटी और हैसियत है। और औरत का चौथा ताल्लुक होता है अपने बच्चों के साथ, ठीक है। ये चार ताल्लुकात कैसे अच्छे रह सकते हैं, इसके बारे में कुछ बातें आप तवज्जो से सुन लीजिए, ठीक है। वो बातें तो हम इंशाल्लाह अगली क्लास के अंदर ही पढ़ना शुरू करेंगे, लेकिन अब यहाँ पर जो तो चार हजरत ने बातें लिखी हैं तो उनके अंदर एक सवाल पैदा होता है, ठीक है। पहला तो हम एड्रेस कर चुके हैं कि अल्लाह के साथ ताल्लुक यहाँ पे क्यों नहीं लिखा, भाई सबसे अहम तो अल्लाह का ताल्लुक होता है, तो वो हम बात कर चुके हैं कि वो वक्त की कमी की वजह से और चूंकि दीगर मौन हो चुके हैं उसके ऊपर बात है। लेकिन यहाँ पर एक और भी सवाल पैदा होता है, वो क्या, वो आप बताएं, ज्यादा अच्छा है तालिबे इल्माना सवाल तो होने चाहिए ना। ये चार ताल्लुक जो यहाँ पे लिखे हैं तो क्या बस यही होते हैं? व्हाट अबाउट मिसाली बीवी की जो किताब थी, सॉरी मिसाली बीवी नहीं, मिसाली औरत की जो किताब हमने तकरीबन पूरी पढ़ के मुकम्मल करी है, तो उसमें जो है वो ये चार ताल्लुक तो हजरत ने नहीं बयान किए थे, ठीक है जी, ठीक है। माँ बाप का ताल्लुक, उसका जिक्र ही नहीं है यहाँ पे कोई, ठीक है। और भाई बहन के साथ ताल्लुक भी तो होता है, ठीक, भाई बहन के साथ और माँ बाप के साथ ताल्लुक, हस्बैंड का ताल्लुक तो सबसे पहले लिखा है हजरत ने, ठीक है। तो यहां पर हजरत ने माँ बाप और भाई बहन का ताल्लुक क्यों मेंशन नहीं किया, ठीक है। तो अब उसकी क्या रीजंस हो सकती हैं, अल्लाह आलम, लेकिन हम उसके ऊपर इल्मी तौर पे जो है वो समझने की अगर कोशिश करें तो एक तो रीजन यही हो सकती है कि भाई वक्त की कमी की वजह से हजरत ने फोकस यहाँ पे इन ताल्लुकात के ऊपर किया, ठीक है। और दूसरी एक रीजन ये भी हो सकती है कि यहाँ पर जो फोकस है, बल्कि पहली रीजन ही यही है कि यहाँ पर जो फोकस है ना, वो शादी के बाद वाली जिंदगी के ऊपर ज्यादा फोकस। ठीक है। अच्छा, एक बड़ा अच्छा रीजन आप में से किसी ने लिखा है यहाँ पर, और डेफिनेटली इट मेक सेंस कि दीज आर रिलेशनशिप्स वेयर कॉन्फ्लिक्ट इज मोर पॉसिबल। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट जो होता है ना, वो ज्यादा मुमकिन जो है वो रिलेटिवली स्पीकिंग इनके साथ ज्यादा मुश्किल हो सकती हैं, क्योंकि इनके साथ आपका बचपन नहीं गुजरा होता, इनके साथ आपका जो है वो वाला वक्त नहीं गुजरा होता जिस वक्त में कि आप पूरा के पूरा इनके ऊपर डिपेंडेंट थे, या इनके साथ आपका और कोई भी इश्यूज नहीं थे। बहन भाई के साथ जैसे कि वक्त गुजरता है, माँ बाप के साथ जैसे वक्त गुजरता है। तो हजरत ने इवन पहले भी यही लिखा था ना कि जैसे कि बिल्कुल दूसरा ही पेज था कि अपने रिश्तेदारों से जहां ताल्लुक सही नहीं रख पाती, ठीक, तो वो फिर खाविन के साथ, सास के साथ और औलाद के साथ। अच्छा, अजीब, औलाद, हालांकि औलाद के साथ तो माँ का ताल्लुक तो ऐसा नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, ये जहां पे कॉन्फ्लिक्ट का ज्यादा पॉसिबिलिटी बनती हो, लेकिन हजरत ने उसको भी यहाँ पे शामिल किया है। ठीक है, तो एक यही रीजन बन सकती है कि भाई वक्त की कमी। दूसरी रीजन ये बन सकती है कि भाई वक्त की कमी की वजह से शादी के बाद वाली जिंदगी के ऊपर फोकस किया है। और एक और भी बड़ी खतरनाक किस्म की रीजन बन सकती है, जो कि खतरनाक किस्म की रीजन है। ठीक है, वो क्या? एक तो रीजन इन्होंने लिख दिया ना, कॉन्फ्लिक्ट जो है वो ज्यादा इनके साथ हो सकता है, ससुराली रिश्तों के साथ। ठीक है, औलाद को भी इसमें शामिल किया, कॉन्फ्लिक्ट औलाद के साथ भी हो सकता है, अजीब। अगर ये कॉन्फ्लिक्ट वाली थ्योरी को फॉलो किया जाए तो कॉन्फ्लिक्ट औलाद के साथ भी हो सकता है। अच्छा, फिर एक और जो खतरनाक किस्म की रीजन है ना, वो जो कि उस फकीर के दिल में आई थी अनफॉर्चुनेटली, जो कि हालात की वजह से दिन में आती है, उसके वास्ता पड़ता रहता है इस तरह के केसेस के साथ बहुत ज्यादा, वो ये भी हो सकता है कि औलाद बात नहीं है मानती तो कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। जी, इस बारे में अक्सर जिनके हकूक अदा नहीं करते हैं। एक ये एक ठीक है, एक ये भी हो सकता है कि माँ बाप के साथ ताल्लुक जो है ना, ये एक नेचुरली बन जाता है, भाई बाप के साथ, भाई बहन के साथ भी ताल्लुक एक नेचुरली बन जाता है। ठीक है, उसको बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो तो वक्त के साथ साथ और माहौल के साथ साथ और घर के अंदर रहने की वजह से बन जाता है। ठीक है, लेकिन जो बाद में ससुराली ताल्लुक होता है ना, तो वो ससुराली ताल्लुक मुश्किल होता है बनाना, ये तो बात हो चुकी है ऑलरेडी, ससुराली ताल्लुक मुश्किल होता है बनाना। लेकिन एक और चीज ये कि अक्सर औकात ऐसा भी होता है, अक्सर औकात ऐसा भी होता है कि ये जो शादी से पहले वाले ताल्लुकात होते हैं ना, माँ बाप का ताल्लुक और बहन भाई का ताल्लुक, ये शादी के बाद वाले ताल्लुकात के अच्छे होने में रुकावट बन जाते हैं। शादी के बाद वाले ताल्लुकात के अच्छे बनने में, अच्छे होने में ये रुकावट भी बन जाते हैं। ठीक है, हर हर केस में नहीं बनते हैं ऑफ कोर्स, जहां पे के बात अच्छे से समझाई जा रही होती है, अच्छी बात समझाई जा रही होती है, वहां पे तो रुकावट नहीं बनते। लेकिन जहां पर जो है ना, वो कि नहीं, अब हमसे ताल्लुक तुम्हारा खराब हो जाएगा, अब तुम उनके हो जाओगे, जैसे मर्दों को भी कहते हैं ना, तुम बीवी के गुलाम बन जाओगे, उसी तरह से बीवी को भी कहा जा रहा होता है, तुम तो जो है ना वो उन्हीं की हो जाओगी, और अब मुझे मुझसे तो तुम बात ही नहीं करोगी, और मेरे प्रिय, इस तरह की चक्कर भी चल रहे होते हैं ना बहुत ज्यादा हमारे मुआशरे के अंदर। खैर, बहरहाल, जो भी है, अल्लाह ताला बात को समझने में बल्कि तौर पर अदा फरमाए। बाकी तफसीलात इंशाअल्लाह अगली क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।